देव रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हम लोगों की जो स्वाभाविक संसार में प्रीति है, प्रेम है, ये प्रेम आया कहां से? भगवान से आया है। भगवान ने हमको प्रेम करने की एक शक्ति दी है, स्वभाव दिया है। स्वभाव जड़ चेतन सभी प्राणी प्रेम करते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो किसी से भी स्नेह न रखता हो, ऐसा एक भी प्राणी है ही नहीं। अब किससे करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, अलग बात है। प्रेम जरूर करते हैं। कोई जड़ वस्तु से प्रेम करता है, कोई चेतन से प्रेम करता है, कोई भगवान से प्रेम करते हैं, कोई माया से प्रेम करते हैं, कोई मायापति से प्रेम करते हैं। प्रेम सब करते हैं, पशु पक्षी भी, वृक्ष लता भी। प्रेम करने का स्वभाव है, प्रेम के बिना प्राणी रह ही नहीं सकता। वो प्रेम करने का स्वभाव भगवान ने अपने में से दिया, क्योंकि भगवान का स्वभाव प्रेम करने का है। तो जैसे पिता का गोत्र होता है, वो पुत्र में अपने आप आता है। पिता ब्राह्मण है तो पुत्र ब्राह्मण ही कहलाएगा, पिता क्षत्रिय है तो पुत्र क्षत्रिय ही कहलाएगा। इसी प्रकार से परमात्मा प्रेम स्वरूप है तो उनका अंश जीवात्मा भी प्रेम स्वरूप है। इसलिए जीव में भक्ति स्वाभाविक है, कहीं लानी नहीं पड़ती, कहीं पैदा नहीं करनी पड़ती, जेनरेट नहीं करनी पड़ती, उत्पादित नहीं करनी पड़ती, कहीं से मांगनी नहीं, कहीं से लानी नहीं, अपने अंदर है, उसी को ही हमें समझना है। इसलिए कहा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। कई भक्तों की कथा नवे छप्पे में आई, अब बहुत से भक्त और हैं। पद पंकज वांस सदा जिनके हर नित उर बसे, छप्पे है छप्पे। छप्पे का अर्थ होता है छह पैर, छप्पे। छप्पे में पढ़ने में तो सात आते हैं, पर ऊपर ऊपर का जो पद होता है उसको नीचे नीचे देते हैं, ऊपर में सारे छप्पे का सारांश आ जाता है। पद पंकज वांच सदा जिनके हरनित उर बसे, जिनके भगवान के हृदय में सदा निवास है, उन महापुरुषों के चरणों में हम सदा वंदना करते हैं, उनके हम चरण कमलों को चाहते हैं। कौन कौन है जी? योगेश्वर सुतदेव अंक मुचकुंद प्रियव्रत जेता, पृथु परीक्षित शेष सूत सौनक परचेता, शत्रुपात्रय सुता सुनीति सती सभी मंदालस, यज्ञ पत्नी ब्रजनार किए केशव अपने वश, ऐसे नर नारी जिते तिनहु के गाऊं जसे, पद पंकज वांच सदा जिनके हरिनित उर बसे। कितनी भक्ति के साथ नाबाजी ने कहा है, योगेश्वर नो योगेश्वर हुए, श्रुतिदेव। देखो यहां श्रुतिदेव नाम है, भागवत में उसका श्रुतदेव नाम है, श्रुतदेव। एक राजा अंग हुआ, मुचकुंद हुआ, प्रियव्रत, पृथु परीक्षित, शेष भगवान, शेष को भगवान भी बोलते हैं, शेष को भगत भी बोलते हैं। ये भगवत कोटि में भी आते हैं, भगवान की कोटि में भी आते हैं। जैसे भगवान राम ने ब्रह्मा जी को कहा था कि अनशन सहित ले हूं अवतारा, मैं अपने अंशों के साथ में अवतार लूंगा। तो अंश कौन? एक मैं तो पूर्ण ब्रह्म साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूं ही, मेरे तीन अंश और हैं, एक अंश बैकुंठ में, एक अंश क्षीर सागर में और एक अंश पाताल में। तो विष्णु तीन है, तीन जगह निवास है, एक ही का तीन रूप है। जो विष्णु बैकुंठ में रहने वाले हैं वो है भरत जी, और जो शेष साई विष्णु है वो है लक्ष्मण जी, और जो भौमा पुरुष है ठीक सब पाताल के नीचे विराजमान है, जिनकी भगवान शंकर भी सेवा करते हैं, वे है शत्रुघ्न जी। ये विष्णु के तीन रूप, और बाकी परब्रह्म परमात्मा राम है ही। तो विष्णु है वो शेषावतार, शेष भगवान के रूप में भी है, और शेष है हरदम भगवान की सेवा में रहते हैं, अपनी गोद में रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, हजारों मुखों से उनके गुणों का गान करते हैं, इसलिए शेष भगत कोटि में भी आते हैं, शेष नाग के हजारों मुख। कहते शेषनाग जी है ये सर्प का सर्पाकृति में क्यों है? इसका भी एक कारण है, भागवत में लिखा है कि शेष भगवान प्रकृति का स्वरूप है, ये प्रकृति रंग बिरंगी है, तो सर्प भी रंग बिरंगा होता है, और शेष है उसके अनेक मुख हैं, वो अनेक मुखों से भगवान का गुणगान गाता है। जीव उनकी दो है और वो अंदर जाती है बाहर आती है भगवान का गुणानुवाद करने के लिए। तो खास तो ये शेष क्या है? प्रकृति है, प्रकृति रंगी बिरंगी प्रकृति, परंतु इसके साथ मोह करेंगे तो इसका जहर चढ़ जाएगा। इस प्रकृति को पा करके तो भगवान का भजन करेंगे तो पार हो जाएंगे। तो ये भगवान का आसन है ये प्रकृति। तो इस प्रकार के ये महापुरुष शेष सूत शौनक परचेता, शत्रुपा त्रय सुता उनकी तीन बेटियां सुनीति सती सभी मंदालस मंदालसा यज्ञ पत्नी ब्रजनारी केशव अपने बस ऐसे नर नारी जिते तिनहू के गाऊं जैसे उनका मैं यश गाता हूं क्योंकि उनके हृदय में भगवान नित्य बसते रहते हैं उनके चरणों को मैं अपने हृदय में रखता हूं। सुतदेव जी की बात आती है कि भगवान जिस समय समंतक मणि लेने के लिए शतधन्वा का पीछा किए बलराम जी भी साथ में थे दोनों ने पीछा किया। भागवत में आता ही पीछा करते 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 भगवान ने कहा बलराम जी आप यही रहो मैं उसको अभी मार देता हूं। तो अपना चक्र फेंका उसको मारा उसके पास मणि तो मिली नहीं। भगवान ने कह दिया क्या करूं सा मणि तो मिली नहीं यहां थोड़ा सा बलराम जी को कृष्ण की बातों में अविश्वास हो गया। देखो एक बात महर्षि कहा करते थे कि भगवान में भक्तों में संतों में किसी को कोई दोष दिखता है तो वो दोष अपना होता है जो उसमें दिखता है। अपने अंदर का दोष वो भगवान में जो आदमी भगवान में दोष निकाले जो आदमी अच्छे अच्छे संत महापुरुष हो गए उनमें दोष निकाले इसका अर्थ है कि उसके अंदर वो दोष है। साधारण आदमी की बात नहीं साधारण आदमी तो यही टीका टिप्पणी करते हैं उनकी बात समझदार आदमी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छे थे उनके हम काव्य को भी जानते हैं पर उनमें ये कमी थी ये जो हम बोलते हैं ना ये हमारी कमी है। अमुक संत बहुत अच्छे हुए ये हुए वो हुए पर उनमें ये कमी थी ये कमी अपनी है। भगवान सब कुछ ठीक है पर भगवान में ये कमी है ये अपनी कमी है। सबसे बढ़िया उदाहरण महाराज जी ने दिया था कि जब नारद जी महाराज ने भगवान को उपालंब देना चालू किया तो भगवान में दोष देखा कहा डह की परचव सब जाए आपने डह की मन ठक ठक करके सारे जगत को खा लिया आप रमा मणि चार आपने तो सुंदर मणि धारण कर ली और शंकर जी को जहर दे दिया। ये नारद जी कब बोल रहे हैं किस अवस्था में बोल रहे हैं यदि भगवान की समुद्र मंथन के समय में गलती होती तो नारद जी भी वहीं थे वहीं उस समय कहना चाहिए महाराज ये क्या करते हो मणि तो आप रखते हो और जहर आप शंकर जी को पिलाते हो उस समय गलती न करके उस समय की गलती को तो कुछ गलती दिख ही नहीं बाद में फिर जब अपनी तरफ से कोई दोष बात आई तो फिर वो पीछे की बातें ले लेकर के बोलते हैं आपने ये किया आपने बताओ बेचारे राजा बलि के साथ में कैसा ठगी का व्यवहार किया तो उस समय आप कहां चले गए उस समय आते और कहते हैं कि देखो मांगते समय छोटे बने और लेते समय देखो कितने बड़े बन गए इसको वचन में लिया इसको आपने कहा कि मैं तीन कदम लूंगा तो इसने जो रूप देखा था तीन कदम का उतने ही रूप से आप मांगो इतने बड़े कैसे हो गए तो छल है उस समय तो नहीं बोले नारद जी बाद में बोले क्या उनका अंतःकरण अब दूषित हो गया। बड़े पुरुषों में दोष देखने से अंतःकरण बहुत दूषित होता है। महाराष्ट्र ने कहा कि एक बार हम लोग कहीं बैठे हुए चार पांच संत और भी थे कुछ चर्चा कर रहे थे कुछ ग्रंथों की भी कर रहे थे कुछ शास्त्रों भी कर रहे थे कुछ संतों के विषय में भी चर्चा कर रहे थे अमुक संत ने ये कहा है अमुक संत ने ये जीवित संत उनके भाषण में ये बात आती है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, ये ठीक नहीं लगा, ये ठीक है। तो उस समय में भाई जी ने ये बात सुन ली। भाई जी ने कहा कि जो संत वर्तमान में विराजमान होते हैं, उन संतों की कोई भी क्रिया, कोई भी वाक्य, कोई भी सिद्धांत है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उनकी उनके अंदर दोष बुद्धि होती है और वो दोष बुद्धि अपनी पुष्ट हो जाएगी, अपने अंदर वो दोष पुष्ट हो जाएंगे। तो बलराम जी के अंदर मणि लेने की इच्छा थी, खास बात तो ये थी, लेकिन भगवान ने कह दिया दाऊ उसके पास तो मणि है ही नहीं, मैंने तो खूब टटोल लिया, यही मार दिया उसको। उस समय बलराम जी सुतदेव के नगर मिथिला नगर के पास ही आए हुए थे, तो उनका आगे ठीक है मैं मिथिला नगरी में जाता हूं, तुम तुम्हारे द्वारिका चले जाओ। मिथिला नगरी की तरफ रवाना हो गए। वहां का राजा था बहुलाश, बहुत खुश हुआ बलराम जी को देखकर, खूब बातें हुई। कई दिन वहां रहे, उसके बाद उस समय बलराम जी ने एक बात कही, हम और कृष्ण दोनों साथ साथ ही आ रहे थे, परंतु शतधन्वा को मारने के बाद कृष्ण तो द्वारिका चला गया, मैं इधर आ गया। तो दोनों के मन में आई, ब्राह्मण के और राजा के, अरे कृष्ण आ जाते तो कितना अच्छा होता, कृष्ण आ जाते तो कितना अच्छा होता, हमारे यहां कृष्ण आए नहीं आए, बस यहां भक्ति चालू हो गई उनकी। दोनों के मन में एक साथ ये भाव पैदा हुआ, बलराम जी आए और कृष्ण नहीं आए, कृष्ण आ जाते तो कितना अच्छा होता। व्याकुलता हुई और मन में ये भी विचार आया कि हमारे अंदर इतनी भक्ति नहीं है, भक्ति होती तो आ ही जाते, हमारे अंदर भक्ति होती और कृष्ण न आए, हजार काम छोड़ के आ गया, हमारे में भक्ति नहीं है। देखो भक्ति जो जो भगत होता है वो भक्ति का लोभी होता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि जिसके पास ज्यादा धन होता है उसको ज्यादा धन नहीं दिखता, थोड़ा ही दिखता है। जितना धन उसके होता है वो तो उसके पास खूब है, लेकिन लोभ के कारण से उसको कम दिखता है। ऐसे ही भगवान के अंदर जिसकी भक्ति होती है वो भक्ति के कारण से उसको अपना प्रेम कम दिखता है कि मेरे में प्रेम नहीं है, मेरे में प्रेम नहीं है। जिसमें जितनी भक्ति ज्यादा होगी उसको यही लगेगा कि क्या बताए, औरों में तो बड़ी भक्ति है भाई, सब भक्ति करते हैं, कोई राम राम करते हैं, कोई भजन करते हैं, मेरे से कुछ होता ही नहीं, दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना, देह हलावा होय रहा हुश रही मनमाय, जैसा नाम था वैसा लिया नहीं। उनसे पूछो उम्र भर आपने क्या काम किया कि नाम ही लिया, उम्र भर नाम लिया लेकिन जो नाम लेते तो कुछ नहीं हुआ, कुछ लिया नहीं। दो कारण होते हैं इसमें, एक तो संत अपनी भक्ति को गुप्त रखते हैं, कभी नहीं प्रकट करते। कबीर जी ने अपने बीजक ग्रंथ में लिखा है कि भगवान का भजन करने वाला होता है, उसके पास कोई आदमी आए तो सोने की मोरों से भरी हुई थैली हो तो खोल के रख दो, परंतु अपने भक्ति की बात हर किसी को मत बताओ। मैं इतनी भक्ति करता हूं, मेरी इतनी भक्ति हो चुकी है, मेरे अंदर ये चमत्कार हो जाते हैं, ये बात कभी नहीं कहनी चाहिए। ये कहते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं ना, उनके अंदर जो बाधा उससे बड़ी बाधा इनमें आ जाती है, जो ये कहते फिरते हैं कि मैं इतना भजन करता हूं, इतना राम राम करता हूं, इतना ये करता हूं, इतनी माला फेरता हूं, किसी को भी ये बात बता दोगे बराबर हो जाएगी। इतनी भक्ति गोपनीय होती है। सुतदेव के और राजा के एक साथ व्याकुलता हुई, अरे भगवान आए और मिले ले, ओ हमारे अंदर कोई भक्ति की कमी नहीं, बलराम जी आ गए, भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए, कृष्ण भगवान नहीं आए, अब अपने में तो कमी देखना, भगवान में गुण देखना और उनकी प्रतीक्षा करना, उनके लिए व्याकुल होना, यही तो भक्ति, और क्या भक्ति होती है। बड़े व्याकुल हो गए, भगवान अपने द्वारिका में रहे, तो ऐसे करते करते उन दोनों के मन में आए कि चलो वो नहीं आए तो अपने चलते हैं, अपने चलते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। दोनों तैयार होते हैं, फिर कहते हैं आज नहीं कल चलेंगे, क्यों आज नहीं, आज तो भद्रा लग गई, आज तो पंचक लग गया, आज व्यतिपात हो गया, आज बार अच्छा नहीं है, ऐसी भावना भगवान ने भरी उनके। क्योंकि जब भक्त में व्याकुलता होती है और भगवान जब तक नहीं मिलते हैं, वो घड़ी भक्त के लिए बहुत ऊंची भक्ति की होती है और उस घड़ी में भगवान को विशेष रस आता है। भक्त व्याकुल और भगवान मिले नहीं, भगवान का एक स्वभाव और भी है, जो भगवान की भक्ति करता है उससे भगवान छिपते भी हैं और कुछ कुछ उसके अंदर विश्वास भी पैदा करते हैं, कहीं वो नास्तिक न हो जाए। भगवान बहुत ढंग से पालते हैं। संतों की वाणी में आता है कि जैसे बाटी पकाने वाला आदमी बाटी बनाई जाए आटे की, तो छाने रख करके उसमें वो दे देते हैं, बाटी को रख देते हैं, परंतु दूर बैठे हुए उसको बार बार इधर उधर भाले से बदलते रहते हैं उसको बाटी, पास में रखे तो हाथ जल जाए, तो दूर लंबा भाला रखते हैं, भाले से उस बाटी को यूं यूं फिराते रहते हैं, एक ही एक तरफ रखे तो खराब हो जाए। ऐसे भगवान भक्ति करने वाले को निराश भी नहीं होने देते, मिलते भी नहीं और उसके अंदर प्रेम भी पैदा करते हैं, थोड़ा विश्वास भी पैदा करते हैं और प्रकट भी नहीं होते हैं। न तो वो भगवान को छोड़ ही सकता है, क्योंकि उसके कई बातों में उसको अच्छा लगता है, ये भजन करना, ये रोना। इसलिए संतों ने कहा भी है कि हे विरह, तू कभी हमको छोड़ के मत जाना। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, भगवान आप मिलना नहीं, ये विरह बहुत अच्छा है। विरह गोपियों को विरह हुआ तो क्षीण वह आता है ध्यान प्राप्त च्युताश्लेष, ध्यान प्राप्त च्युताश्लेष सर्वक्षीण अमंगला, सर्वक्षीण मंगला, माने जितने उनके पुण्य थे वो ध्यान से भगवान से मिले ना, तो उसके आनंद में सब उनके पुण्य खत्म हो गए। और भगवान के विरह में गोपियां खूब रोई ना, तो उस रोने के अंदर उनके कोई पाप थे भगवान से न मिलने के, जो प्रतिबंधक थे वो सब उसमें रो में खत्म हो गए। पाप का नाश लोग देखते हैं कि पाप हो गया तो पुण्य का काम कर दो तो पाप नष्ट हो जाएगा, ये बात शास्त्र के सिद्धांत से और व्यवहार से दोनों से ही नहीं बैठती। एक आदमी ने समाज की उन्नति के लिए बहुत बड़ा काम किया, सरकार ने उसको इनाम दिया कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, प्रोत्साहन के रूप में हम आपको इतना इनाम देते हैं। और वही आदमी यदि एक्सीडेंट में किसी आदमी को मार दे तो उसको सजा होती है। अब वो कह सकता है कि जो मैंने पुण्य का काम किया था, मैंने डूबते हुए आदमी को बचाया था, उसके बदले में एक्सीडेंट में एक आदमी मर गया, तो उसमें भरपाई कर लो कि नहीं नहीं वो नहीं होगा, उसमें तो आपको हमने सम्मान दे दिया, लेकिन एक्सीडेंट में आपने किसी को मार दिया, इसका तो दंड भोगना पड़ेगा। ये विभाग अलग है, ये विभाग अलग है। लोगों के अंदर भ्रांति है, बड़ा भारी ये बहम है कि हमसे कोई गलती हो गई तो पुण्य का काम कर देंगे तो गलती डूब जाएगी, ऐसा नहीं। पुण्य से पाप नहीं कटते हैं, तो फिर पाप कैसे कटते हैं? या तो भोगने से कटते हैं, जो दुख आएगा उसके भोगने से पाप कटेगा, और या फिर भगवान के विरह में रोने लग जाए, भगवान के विरह में बेचैन हो जाए। ये दो है पाप नाश के सबसे अच्छे उपाय, पर वो तो उपाय बहुत लंबा है। और वो भी पाप कब नष्ट होते हैं? जब हमारे अंदर कोई आफत आ जाए और हम उसमें खूब प्रसन्न रहे तब पाप नष्ट होते हैं। यदि हम उसमें खूब रोते रहेंगे तो फिर भी पाप बाकी रह जाएंगे, पूर्णतः पाप नष्ट नहीं होगा। पूर्णतः तो नष्ट होगा नहीं, लेकिन अंशतः नष्ट होगा। दुख पा लिया ना, इसलिए अंशतः नष्ट होगा। परंतु प्रेम पूर्वक सह लिया तो वो पाप नष्ट हो जाएगा, पर उसमें तो अपने जाने कितने जन्म जन्मांतर के पाप है, कब तक हम सहन करेंगे? इसलिए भगवान के विरह में रोना चाहिए। संतों ने यह भी बताया कि विरह में इतना रो को आंख से तो आंसू निकले नहीं, आंख से आंसू नहीं निकले, आंख को भी पता नहीं चलेगी हम रो रहे हैं, और अंदर में जो है बेचैनी कम न हो, और बाहर से उसको बिल्कुल पता नहीं चले, बाहर देखो बहुत मौज हो रही है, ये बस बड़े मौज से रहते हैं। ये भक्ति की इतनी गोपनीय बातें हैं। अपनी भक्ति का ज्ञान किसी को हो जाए फिर क्या भक्ति की? लोग संसार के प्रेम को तो छिपाते हैं, जो अनुचित प्रेम होता है उसको छिपाते हैं, उससे ज्यादा छिपाने लायक होता है भगवान का प्रेम। उस प्रेम के अंदर भगवान के भी मुश्किल हो जाती है। सुतदेव बहुलाश ये दोनों के दोनों अपनी भक्ति को द्वारिका में जाकर के प्रकट करना चाहते थे, लेकिन भगवान उनके मन में विचार पर आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, ऐसे करते 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 एक साल बीत गया उनका, आज चलेंगे कल चलेंगे, और अंदर ही अंदर उनकी भक्ति बढ़ी, तो भगवान वहां स्वयं ही मिथिला नगरी में स्वयं पधार आए। भागवत के भगवान कृष्ण लीला में अनेक बातें, उनमें बहुत सारे संसार भर के सब ऋषियों के साथ यदि भगवान आए हैं तो, या मिथिला नगरी में आए, यही एक ऐसी बात है, और जगह बात नहीं है। ब्रज में तो कोई आया ही नहीं, ब्रज में जो प्रेम लीलाएं थी उस लीला में तो भगवान और भगवान के जो है गोलोक में रहने वाले पात्र, बस वही गोपियां, वही नंद जी, वही यशोदा जी, वही भगवान के साथी और वही गाय, ये नंदलोक के पात्र थे। तो यहां क्यों आए? यहां भगवान ने लीला दिखाई। जैसे कोई आपके यहां नापासर गांव में आ जाए कि साहब एक नाटक मंडली आई है, कहां से आई है? कि वृंदावन से आई है। क्या चाहिए साहब? रासलीला दिखाने आई, रामलीला दिखाने आई, कृष्ण लीला दिखाने आई। ठीक, ऐसे भगवान गोलोक की लीला दिखाने के लिए आए थे। परंतु गोलोक की लीला में और यहाँ पृथ्वी की लीला में एक अंतर था कि गोलोक में विरह नहीं होता, यहाँ विरह होता है। भगवान भी विरही होते हैं और गोपियां भी विरही होती हैं। ये विरह में जो रोना है ये गोलोक में नहीं होता। भगवान वही है, दशरथ जी वही है और कौशल्या जी भी वही है, परंतु वनवास की लीला पृथ्वी पर ही होती है, साकेत में नहीं होती। वनवास के अंदर जाने के समय जो रोना होता है वो लीला केवल मनुष्य शरीर में आते हैं भगवान, तभी होती है, साकेत में नहीं होती। देखा जाए क्यों आए भाई यहाँ भगवान लीला करने, तो अच्छे अच्छे भक्तों ने कहा है कि वो रोने के लिए आए, रुड़ाने के लिए आए। भगवान यहाँ क्यों आए? रोने के लिए आए। अपने लोग किसी आदमी से नाराज हो जाए तो क्यों आए कि तुम रोड़ने आए हो? ऐसे ही भगवान यहाँ आए तो क्यों आए? रोने के लिए आए। और क्यों आए? रुलाने के लिए आए। भक्तों को रुलाते हैं और भगवान रोते हैं, इसलिए यहाँ आए। भगवान स्वयं सुखदेव और बहुलाश्व राजा से वहां पर बड़े प्रेम से मिले। दोनों ने अगवानी की, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। समस्त संतों सहित एक ही समय में भगवान दोनों जगह पहुंच गए। राजा ने तो अपने पास बहुत पदार्थ थे, सत्कार किया। बेचारे सुखदेव के पास कुछ नहीं, मिट्टी के पात्र, फल फूल, जल, घास फूस की वहां चटाई, उस पर बैठा दिया भगवान। देखो भगवान की एक शर्त देखो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ये भगवान यहां कायल हो गए, कायल। जो मुझे पत्र पुष्प फल और जल प्रेम से देता है तो मैं प्रेम से स्वीकार करता हूं। जितना प्रेम उस देने वाले में होता है उससे दुगना प्रेम मेरे में होता है, दुगना प्रेम देने वाले। देने वाले में प्रेम जितना है उसे दुगना प्रेम भगवान का वो स्वीकार करते हैं। सज्जनों, हमारे यहां संसार में हमको कोई पता चले कि अमुक आदमी हमारी बहुत प्रीति चाहता है, हमसे प्रेम करना चाहता है, और वो आदमी बहुत ऊंचे दर्जे का आदमी है, बहुत काम आने वाला आदमी है, और वो हमसे बहुत प्रेम करता है, हमसे प्रभावित है, तो हम जान जान करके उससे मित्रता करेंगे। अच्छा, वो हमको चाहता है कि पूछो मत, आपसे तो बहुत प्रेम करना चाहता है और आपको बहुत चाहता है। तो अपने ही मन में आते कि भाई इतने ऊंचे ओहदे में रहने वाला हमारे काम ही आएगा कोई, तो अपन उल्टा उससे जाने के लिए, मिलने के लिए लालायित होते हैं। ऐसे भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं और संत महात्मा कहते हैं कि अरे आपको भगवान जितना चाहते हैं उतना संसार में आपको कोई नहीं चाहता। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। एक भगवान का भगत था, उसके वंश में कोई नहीं था, कोई नहीं, भाई नहीं, भतीजा नहीं, बहन नहीं, भांजा नहीं, खुद का विवाह हुआ नहीं, खुद ने विवाह करवाया नहीं, खुद के कोई संतान नहीं, क्या करें? भगवान का नाम लेता था बेचारा, बस्ती में से जो कुछ मिल जाता उससे अपना टिकट बनाकर भगवान के भोग लगाता। कहा महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं मंत्र जानता नहीं हूं, बिल्कुल मुझमें अकल नहीं है, सुनी सुनी और देखी देखी नकलें करता हूं, ये आपको भेंट चढ़ाता हूं, ये मैंने रोटी बनाई आपको चढ़ाता हूं और आपका प्रसाद पाता हूं। आपको इसलिए चढ़ाया जाता है कि फिर वो प्रसाद हो जाता है, आपको नहीं चढ़ाते हैं तो प्रसाद नहीं होता। आजकल छोटे तबके के लोग होते हैं वो बोलते हैं खाना खा लो, बड़े तबके के उनसे थोड़े बड़े साधारण आदमी हैं वो कहते हैं भोजन कर लो, और ऊंचे से ऊंचे दर्जे के आदमी हैं वो कहते हैं प्रसाद पा लो। तीन प्रकार के आदमी को इनकी भाषा से ही तय कर लेना चाहिए कि किस भाषा में बोलता है। खाना खाओगे, भोजन करोगे, प्रसाद पाओगे, ये कैटेगरी है बोलने की, कैटेगरी प्रसाद पाओगे, प्रसाद प्रसाद पाओगे। भगवान के अर्पित किया हुआ होता है वो प्रसाद हो जाता है, वो भोजन नहीं है। प्रभु प्रसाद पट धरे ही, कपड़ा भी पहनते हैं तो पहले भगवान के मंदिर में रख करके, चाहे अपना जो भी कपड़ा है वो पहले पहले वहां रख दिया भगवान के, फिर प्रसाद समझ के पहन लिया। प्रसाद समझ करके कपड़े पहनने चाहिए, प्रसाद समझ के अन्न लेना चाहिए, हरदम भावना रहिए भगवान का प्रसाद है। तो मैं तो सुनी सुनाई करता हूं, मैंने तो ऐसा ही सुन लिया करता हूं, मेरे मन में कोई भाव तो है नहीं, जानता नहीं ना मैं। और भगवान बड़े खुश होते हैं उस ऐसे भगत से जो कहता है कि मैं जानता नहीं, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। भोला भगत है वो, अब वो मरने लगा, वो भगत मरने लगा तो उसने भगवान को रोते रोते पुकारा, प्रभु मेरा तो कोई नहीं संसार में, तो मेरे को पिंड कौन देगा? मरने के बाद उसका पिंड दान न हो तो ऐसा शास्त्रों में मानते उसकी गति में बाधा पड़ती है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ नहीं और मेरा कुछ नहीं, कोई परिवार में मेरा है ही नहीं, कौन पिंडदान करेगा? रोने लग गया, मरने लगा था कि न मैंने किसी को अपना माना, मैंने तो एक आपको अपना माना, आप कि हमको कभी दिखे नहीं, नहीं दिखे आपकी मर्जी, मुझे कौन पिंडदान कौन देगा? तो वो खूब घबरा करके प्रार्थना की, उसी समय भगवान आए और उसको अपनी गोद में लिया और अपने हाथ में आटे का पिंड लेकर के कहा, तेरे को पिंड मैं दूंगा। ये आज भी ऐसी कैसी मूर्ति है उस भगत की, भगवान की गोद में तो वो सो रहा है, भगवान ने गोद में लिया और उसको देख रहे भगवान और ये पिंड दिखा रहे हैं, तेरे को पिंडदान मैं दूंगा। जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूं, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास मेरी सब चीजें अपने आप पहुंच जाती हैं, आवश्यक वस्तुएं अपने आप पहुंच जाती हैं। तू मेरा हो गया, अब तेरा काम तो मुझे करना है, मैं कर दूंगा अपने आप, तो कोई चिंता मत कर। भगवान की गोद में उसके प्राण गए उस भगत के, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई कुछ नहीं जानता, केवल बस्ती में से मांग करके रोटी बना के खाता, ब्राह्मण था। ब्राह्मण होते हैं वो भिक्षा के अंदर सीधी भिक्षा लेते हैं, आटा ले लिया, दाल ले लिया, चावल ले लिया, जो सीधी वस्तु आई फिर अपने हाथ से बनाते हैं सीधी वस्तु, तो वो सीधी सीधा उसको मिल जाता है और कर लेता है, वो मेरे पास पिंडदान के लिए, अच्छा संग्रह रखते नहीं, इससे भगवत विश्वास कम होता है। लोग देखते हैं इतना पैसा हमारे पास संग्रह रहेगा तो इसके ब्याज से हमारा काम चलेगा। जितना हम संसार के भरोसे पर अपना जीवन देखते हैं उतना भगवान से विश्वास कम होता है। वस्तु का दुरुपयोग तो होना नहीं चाहिए, लेकिन संग्रह को बहुत बड़ा मान करके जीवन का आधार भी नहीं मानना चाहिए। कंजूसी कर करके, कंजूसी कर करके खूब मन को महसूस महसूस करके धन इकट्ठा कर लिया, कब आए इससे हमारा बुढ़ापा चलेगा, इससे हमारी पीढ़ियां चलेगी, इससे भगवत विश्वास कम होता है। काम तो भगवान चलाए जैसे चलता है, पर भगवान के प्रति विश्वास कम होता है कि मेरे ये। गीता जी में आया ना, इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम्, ये तो है ये और हो जाएगा और इससे मेरा काम चलेगा, ये आश्रित संपत्ति का स्वरूप बताया है गीता में। कि इसका अर्थ ये है कि हम लोग लुटा दे सब, ये अर्थ नहीं, पैसे को फेंक दें लुटा दें कर दें बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा उसका सदुपयोग करो, परिवार में दूसरों की सेवा में लगाओ, अच्छे से अच्छे काम में पैसा लगाने से दो बात होती है, एक तो पैसे में मोह नहीं होता और एक पैसे पर विश्वास नहीं होता। अच्छे काम में लगते ही पैसा एक गौण हो जाएगा, काम अच्छा हुई कितना अच्छा हुआ, पैसा तो लगा लेकिन देखो सबके काम है बहुत अच्छा हो गया, तो पैसा तो हो गया गौण और उसका उपयोग हो गया अच्छा। दूसरे में पैसे पर विश्वास नहीं होगा, अच्छाई पर विश्वास होगा। इसलिए जहां हमारा जितने धन में विश्वास होगा वो विश्वास भगवान का कट जाता है। इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम्, ये तो है और ये फिर आगे हो जाएगा, इतना पैसा यू हो जाएगा, इतना यू हो जाएगा, ऐसी कल्पना के अंदर उसी में उलझ जाते हैं। सुखदेव और बहुलाशु उनमें ये भावना नहीं थी, वो भगवान के संकल्प में उलझे रहे और उलझते उलझते जो है इतने भगवान में मस्त हो गए कि भगवान को मिथिला नगरी में आना पड़ा। सारी मिथिला नगरी भगवान के स्वागत के लिए उलट पड़ी। हम उनको किसी को भी पता नहीं कि भगवान क्यों आए, उन दोनों को भी पता नहीं कि हमारी भक्ति से आए क्या, उनको भी पता नहीं। भगवान किसी भक्त की कभी कभी प्रशंसा करते हैं मुख पर, तो वो भगवान संकोच में करते हैं। अपरम भवतो जन्म पूर्ण, और अपरम भवतो जन्म, आपका तो जन्म बाद में हुआ है, सूर्य का जन्म तो पहले ही हो गया, कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान, तुमने कैसे कर्मयोग का उपदेश सूर्य को दिया, गीता में पूछा। अपरोयम अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो बाद में हुआ और सूर्य का जन्म पहले हुआ, कथम एतद् विजानीयाम, कैसे जाना। और उससे पहले भगवान कह के आए कि भक्तोऽस्मि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्, स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन, भक्तोऽस्मि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। ये उत्तम रहस्य है, क्या उत्तम रहस्य यह है कि तू मेरा सखा है, तू मेरा भक्त है, इसलिए उस विद्या को मैंने तुम्हें अपना समझ के कहा। रहस्य की बात, रहस्य की बात कह करके भगवान ये बताना चाहते हैं कि तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है, तो मेरी बात को तुम्हें विश्वासपूर्वक स्वीकार करना चाहते। तो भगवान के ऊपर विश्वास और भगवान के अंदर प्रेम ये स्वतः होने वाली चीजें हैं, स्वतः है। आज हम लोगों का स्वतः संसार में प्रेम होता है, स्वतः संसार में स्वतः आकर्षण होता है। परमात्मा के विषय में इतना सुनते 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 भी पूरा भगवान में जैसा आकर्षण हमारा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, वैसा क्या उसका आधा ही नहीं होता। बोलते भी है, कहते भी है, समझते भी है, पढ़ते भी है, परंतु वैसा नहीं होता। कई कारणों में सबसे बड़ा कारण यह है, सबसे बड़ा कारण यह है कि हमको संसार में सुख की भ्रांति होती है। महाराष्ट्र ने कहा कि बंधन का कारण क्या है, इस विषय में गीता जी से पहले जो विचार हुए थे उन विचारों से पूर्ण संतोष नहीं हो सकता साधक को। कोई कहता अज्ञान है, कोई कहता मोह है, कोई क्या कहता है, कोई शास्त्र क्या कहता है, कोई कहता है भक्ति में कमी है, भगवान के प्रेम में कमी है। सब बातें ठीक है, गलत एक भी नहीं है, परंतु हमारे दिमाग को आकर्षित करके हमारे दोष को ठीक पकड़ने की बात गीता ने कहा कि सुख की बात है। सुख दिखता है ना, संसार में सुख है, ये सुख की भावना नहीं मिटती तब तक कुछ नहीं होता। कितना ही सफेद कपड़ा ले आओ, पीलिए का बीमार है उसको कहेंगे देखो ये सफेद कपड़ा है ना, कि हाँ भाई सफेद है, आप कह रहे हो इसलिए सफेद है, सफेद है, परंतु अपने अंदर से ही भावना है कि सफेद तो ये कह दिया इसलिए कहा है तो पीला ही, अभी मेरी बीमारी मिटी नहीं। नहीं वो कह मेरी बीमारी मिटी नहीं। ऐसे ही अपने लोगों की बीमारी है कि संसार में हमको सुख दिखता है, आराम दिखता है, उसको हम गहराई से नहीं देखते हैं। जितने बड़े बड़े भक्त हुए भगवान में क्यों आकृष्ट हुए कि उनको जो संसार में हम लोगों को सुख दिखता है उनको लेशांश भी सुख नहीं दिखता, बल्कि उनको दुख दिखता, आफत दिखती है, आफत, उनको आफत दिखती है। बताया था ना एक संत देव गए जंगल में, जंगल में गए जाकर के शौच जाकर के हाथ धो रहे थे तो वहां पर एक चरु निकले है, चरु जिसमें खूब सोने की अशर्फियां थी, मोहरे थी, मोहरे। तो देखे संत डर गए, तुम्हारी सोने की मोहरे, भागे वहां से जोर से जैसे कोई सिंह आ जाए, बाघ आ जाए, भागे ऐसे भागे संत जोर से। गांव वाले वहां खड़े, गांव तो गांव ही होता है, घूमते रह गए, बाबा जी इतने डर गए हो, पसीने से तरबतर हो गए हो, क्या बात है? अरे भाई क्या बात है, डाकनी आई, डाकनी जंगल में, डाकनी है जंगल में, डाकनी है, डाकनी कोई मत जाना, इस रास्ते से कोई मत जाना, डाकनी है। केवन कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, डाकनी कैसे आएगी, आएगी तो हमारे पास बंदूक है, चार बड़े बड़े अच्छे अच्छे पहलवान, मोटे शरीर वाले, बड़ा अच्छा बंदूक का अभ्यास, चार जने मिलकर के गए, चलो यूं यूं करते सावधानी से, कहीं दिख आएगी उसको गोली से मार देंगे, भय मिट जाएगा। बाबा जी इधर से भागे, देखे उसने कहा है, चलते चलते जाके देखा दौरे के ऊपर बस असरफियों का कलश देखा, ये क्या है, खुदा रे तांबे का कलशा है, इसमें क्या है भाई, तो इसमें तो कुछ सोने की असरफियां है, और अपना साफा उतार करके साफे को बिछा करके ऊंधाया है कि अपन चार जने हैं, पढ़े लिखे थे नहीं, एक लकीर तो यूं कर दे, एक लकीर यूं कर दे, ये तुम्हारी है, ये ढेरी तुम्हारी है, ये ढेरी तुम्हारी है, ये ढेरी हमारी है, एक दो तीन चार ढेरी। बहुत अच्छा, देखो इन बाबाओं को कुछ ज्ञान तो है नहीं, यही डाकन थी क्या? ये डाकन क्या है बाबा? ये तो लक्ष्मी देवी है, ये तो हमारे घर में आ जाएगी तो निहाल हो जाएंगे, बड़े खुश हुए, बड़े खुश, खूब खुश हुए। फिर कहा चलो भाई भूख लग गई, अब भोजन जो है दो जने जाओ भोजन ले आओ। दो जने गए भोजन लाने के लिए, वो दोनों भोजन लाने के लिए जा रहे थे, आपस में बात कर रहे हैं कि अपने दोनों तो आराम से भोजन कर लें और ऐसा उपाय करें कि इनकी एक एक ढेरी अपन दोनों को मिल जाए। आपकी क्या जस्ती? बात तो बहुत अच्छी है, इसका एक ही उपाय है, उसमें जहर मिला देंगे, जहर मिला देंगे, फिर वो लेके आएंगे और वो जहर खा जाएंगे, वो मर जाएंगे और एक एक ढेरी अपने पास। अरे बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाजार में जाकर आराम से भोजन किया और थोड़ा जहर खरीद लाए और उनके भोजन में उन्होंने जहर मिला दिया। वो भोजन लेके आ रहे थे, इधर ये दोनों बातें करें कि देखो अपने पास बंदूक है, कोई देखने वाला तो है नहीं कि बंदूक की गोली मार दो इनके, इनके गोली मार दो, ये दोनों मर जाएंगे, अपन दोनों इनकी ढेरी ले लेंगे। जो पाप उनके मन में आया वही पाप इनके अंदर आ गया। ऐसे करके उधर तो उन्होंने इन दोनों को मारने का निश्चय किया, इधर इन दोनों ने उनको मारने का निश्चय किया। सब लोडेड थी बंदूक, जो ही वो लेके आए ठे ठे करके गोली मार दी, बेचारे मर गए। फिर वो भोजन लिया उन्होंने, कहा अपना आराम से भोजन करो, बैठ गए खूब गप लगाते लगाते, भोजन कर लिया, भोजन किया, वो दोनों भी मर गए। अब वो है जैसी रह गई ढेरिया। इधर गांव के अंदर का वो चार आदमी गए थे, सुबह के गए हुए, दोपहर से ज्यादा समय हो गया, वापस लौट के आए नहीं। महात्मा जी ने कहा भाई ऐसा लगता है उनको डाकड़िए खा गई, डाकड़िए खा गई। डाकड़ी कैसे खा गई होगी महाराज? आप बताओ डाकड़ वगैरह क्या? भाई तुम देख लो पहले जाकर के, तुमको नहीं पता चले तो हमारे महाराज आगे पीछे आपको चलना तो पड़ेगा, चलो बताओ। तो जहां बाबा जी ने हाथ धोया था उसी जगह के देख लो, ये डाकर है, ये सोना चांदी रुपया पैसा धन संपत्ति, ये देखो इसका आते ही आदमी के अंदर लोभ पैदा हो गया। अनधिकार का जो, अनहक का जो पैसा आता है, बिना अधिकार का जो आता है उसके अंदर लोभ दोष पैदा हो गए। ये डाकड़ी है, डाकड़ कोई और थोड़ी ही होती है, ये अपने अंदर की डाकड़ वो इनको खा गई। वो गोली से मर गए और ये जहर से मर गए। तो जो संत दृष्टि से देखें तो कितना दोष है उस धन में, और उनको उसको सुख बुद्धि से देखा तो उनका नाश हो गया। तो ये गीता ने खास करके बीमारी पकड़ी है। आज के युग के अंदर यदि गीता की सिद्धांत की बात हम लोग समझें तो वास्तव में ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर आदमी सुख के अंदर, सुविधा के अंदर, आराम के अंदर खराब होता जा रहा है और सुख सुविधा का कोई अंत नहीं। खूब सुख मिले, आराम मिले, ये सुख सुविधा का अंत नहीं है। क्यों नहीं अंत है? कि सुख स्वरूप परमात्मा का अंश, जो साक्षात सुख का स्वरूप है, उसकी जड़ वस्तु कितना सुख दे देगी? सीमित सुख देगी। पंखा हवा कर देगा, एयर कंडीशन थोड़ा ठंडा कर देगा, और उस ठंडियों के दिन हो गए तो गर्म कर देगा, क्या और क्या कर देगा? वो बार बार का ही काम है। जैसे पानी ओस का कारज नहीं सरता, ओस से खेती नहीं होती, ओस से प्यास नहीं बुझती, ऐसे संसार की जितनी सुख सुविधा की सामग्री है ये ओस के पानी की तरह, इससे खेती नहीं हो सकती, इससे प्यास नहीं बुझती। प्यास तो वही भगवान के भक्ति रस से ही बुझती है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने वहां भगवान की खूब बढ़िया भक्ति की, और भगवान ने भी सुखदेव जी से कहा कि देखो ये जितने हमारे साथ ब्राह्मण आए हैं ना, ये ब्राह्मण भी हमारे लिए, तुम्हारे लिए पूजनीय होते हैं। ऐसे करके वहां सुखदेव जी ने लिखा है कि भगवान क्या है, भक्त भक्तिमान, भक्तों की भक्ति करने वाले भगवान है, भक्त भक्तिमान। भगवान भक्ति से युक्त तो है ही, पर भक्त भक्तिमान, भक्तों की भक्ति करने वाला संसार में कोई नहीं है। लोग चिढ़ाएंगे, हंसेंगे, तरह तरह की बात बनाएंगे, एक भगवान है जो भक्त को चाहने वाले, भक्त की भक्ति करने वाले हैं। ऐसे सुखदेव जी को हमारे नाभाजी महाराज ने बड़े आदर के साथ कहा, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। राम
जय जय सीतापते रामा।